आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड है। हाँ, पृष्ठ संख्या 52 पर आ गए हम। लेक्चर नंबर है 8। यहाँ उस भाषा टीका की हम हिंदी टीका पढ़ रहे, हिंदी अनुवाद। देखो, बीच में ही हम शुरू कर रहे हैं। हमने ग्रंथ के शुरू में जो 6 बातें होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो मंगलाचरण करते हैं, तो मंगल, फिर निमित्त, हेतु, ग्रंथ का प्रमाण, ग्रंथ का नाम और उसका कर्ता, ये 6 बातें बता के फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कर्ता के नीचे वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा था, बड़ा वाला। कर्ता में हमने 3 कर्ता देखे थे, अर्थकर्ता, ग्रंथकर्ता और उत्तर ग्रंथकर्ता। देखो, जब ऐसी पद्धति है, शास्त्र प्रारंभ करते हैं कोई प्रवचनकार, तो वहां ऐसे कहने की पद्धति है, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, यानी मूल ग्रंथ कर्ता कौन है? तो सर्वज्ञ देव है। तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा, यानी उसके पश्चात उन ग्रंथों की रचना गणधरों ने की, और फिर उसके प्रसाद से, उन परंपरा से, आचार्यों की परंपरा में ग्रंथों की रचना करते करते अब यहाँ जो ग्रंथ का फिर हम नाम लेंगे, यहाँ गोमरसार के कर्ता है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, फिर टीका के कर्ता है टोडरमल जी, ऐसा कहकर फिर श्रोतारा सावधानतः श्रुणवंत, यानी हे श्रोता, इसे सावधान पूर्वक सुनना, ये कहने की ऐसी पद्धति है। यही बात यहाँ कहते हैं, यहाँ की 3 कर्ता जो बताए हैं, अर्थकर्ता, ग्रंथकर्ता और उत्तर ग्रंथकर्ता। उसमें पहले हमने देखा था कि वर्धमान तीर्थंकर यानी महावीर भगवान, वे अर्थकर्ता है, वो भी हमने देखी थी, उनकी दिव्य ध्वनि का पूरा विस्तार से वर्णन भी हो चुका था। अब यहाँ उसके नीचे के 2 लाइन वाला पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे हम। पुनश्च उस अर्थ का ज्ञान, यानी उन्होंने तो दिव्य ध्वनि में वो बात आ गई, अब उसका ज्ञान, वहां कवित्वादि विज्ञान, कवित्व यानी वो उसके छंदबद्ध रचना आदि जो करना, तो हाँ, कवित्व का भी उनके ज्ञान होता है, और 7 रिद्धि, उनसे संपूर्ण विराजमान ऐसे गौतम गणधर देव, वे ग्रंथ करता जानना, क्योंकि उन्होंने दिव्य ध्वनि में से अर्थ को जानकर उसको द्वादशांग के रूप में, ग्रंथों के रूप में रचना की उसकी। पुनश्च उन्हीं के अनुक्रम के धारक, हाँ, 7 रिद्धि जो बुद्धि रिद्धि आदि जो है ना, 4 रिद्धि भी आती है, बहुत सारी रिद्धियां उनके प्राप्त होती है, तो उसको 7 रिद्धि कहें, 7। वैसे तो 64 होती है, अभी उसमें से केवल ज्ञान रिद्धि के बिना उनके सारी रिद्धियां प्रकट होती है, उसके साथ कहा, मेन साथ है, मेन साथ। जैसे चारण रिद्धि कहेंगे तो चारण रिद्धि में तो बहुत सारे ना, तंतु चारण, गंगा चारण वगैरह वगैरह, तो मेन है वो 7 है, 7 रिद्धियां।
जैसे 8 कर्म है और उसके उत्तर वेद 148 है, वैसे रिद्धियां मूल ओरिजिनली 8 है, तो उसके भेद भेद पेटा भेद जिसको हम कहेंगे सब डिविजन, ये गिनते हुए 64
फोर
होते हैं, उसमें से एक केवल ज्ञान रिद्धि छोड़कर बाकी सात रिद्धि जो है,
क्योंकि बुद्धि रिद्धि में भी केवल ज्ञान, फिर कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि वगैरह उसके अलग अलग प्रकार है। ये अपना यहाँ का विषय नहीं है, नहीं इसलिए उसमें हम डिटेल में नहीं गए।
आएगा वो?
हाँ, ये सारी डिटेल्स तो आने वाले हैं सब जगह। हाँ, पुनश्च उन्हीं के अनुक्रम के धारक तथा नष्ट नहीं हुआ है सूत्र का अर्थ जिनके, क्या कहते हैं, गणधरों ने जो द्वादशांग की रचना की थी तो सूत्रबद्ध रचना की है, सूत्रों में उसकी रचना की है। अब कहते हैं उसी अनुक्रम से यानी उसी परंपरा से, उसमें कुछ बदल फर्क किए बिना नष्ट नहीं हुआ है सूत्र का अर्थ, यानी उसका अर्थ नष्ट नहीं हुआ या कोई गलत उसमें डाल दिया अपनी ओर से, ऐसा नहीं किया है। तथा रागादि दोषों से रहित ऐसा जो मुनीश्वरों का समूह, यानी वितरागता है ना, प्रचुरता है, वितरागता पूर्ण वितराग नहीं हुए है फिर भी रागादि दोषों से रहित है, क्योंकि कषाय के वश तो खोटी कल्पना और खोटी जो लिखान है, खोटी रचना की जाती है, परंतु ऐसे यहाँ तो रागादि दोषों से रहित ऐसे जो मुनिराज है वह उत्तर ग्रंथ करता जानना। मुनिराजों का समूह ने परंपरा से अनेक मुनियों ने जो ग्रंथ रचना की है उनको कहेंगे उत्तर ग्रंथ करता। इस प्रकार मंगल आदि छहों का व्याख्यान यहाँ किया, इस तरह तीसरा प्रयोजन दृढ़ किया। तीसरा प्रयोजन क्या था याद है? हाँ, शिष्टाचार का पालन करना। प्रयोजन देखो, प्रयोजन हमने अभी तो छह देखे, उसके पहले हमने चार प्रयोजन देखे थे, 48 पृष्ठ पर हमने देखे थे। पहला सेकंड लाइन में पहला प्रयोजन निर्विघ्न समाप्ति ग्रंथ की, दूसरा नास्तिकवादियों का परिहार, तीसरा शिष्टाचार का पालन करना। वो शिष्टाचार के पालन में ये छह बातें बताई थी, मंगल निमित्त हेतु वगैरह वगैरह। बात ख्याल में आई ये बात?
देखो हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दो बातें बताई हैं कि जो गणधर देव जानते हैं उन अनुक्रमों के वो धारक हैं। उन अनुक्रमों के वे धारक हैं। अब आगे ये बताते हैं कि सूत्र का अर्थ जिनका नष्ट नहीं हुआ है, यानी जो कुछ सूत्र के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, क्यों? रागादि दोषों से रहित है, यानी उनके अभी केवल संज्वलन क्रोधमान माया लोभ बाकी है, बाकी जो तीव्र कषाय है उनका वहाँ कोई सद्भाव ही नहीं है। देखो, जिनके ज्ञान नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज्ञान है ऐसा बताने का, जिनके परिणाम है वह तो तीव्र राग है, वो उनके नहीं है, यानी हमें मालूम नहीं है फिर भी हम मालूम है करके कुछ उल्टा पुल्टा लिख दे, सूत्र के विरुद्ध ऐसा वो नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं, उलट पुलट वाक्यों के द्वारा वो बताया। क्या कहा? देखो, नष्ट नहीं हुआ है। क्या नष्ट नहीं हुआ है? सूत्र का अर्थ जिनके, यानी जो सूत्र के सही सही अर्थ को जानते हैं। और कैसे? रागादि दोषों से रहित। तो जो मुनीश्वर हैं वे तो तीन कषाय के चुकड़ी का अभाव तो उनको डेफिनेटली है, ऐसे आचार्य ने जो लिखा है वह उत्तर ग्रंथ करता है। देखो, यहाँ तो पंडित टोडरमल जी के एक एक वाक्यों को इतना अर्थ है, वह हमें जितना अधिक ख्याल में आता है उतना आनंद बढ़ता है। यानी क्यों सब लिखते हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह कितना योग्य है, मतलब हम हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, नहीं पढ़ने में हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। आगे
देखो, पुनश्च तर्क जो शास्त्र के आदि में उपकार स्मरण किसे अर्थकारी है, हमने चार प्रयोजन देखे थे उसमें ये चौथे प्रयोजन के बारे में तर्क पूछ रहे हैं, शंकाकार पूछ रहा है कि उपकार स्मरण करना किसके लिए वो अर्थकारी है, यानी क्या लाभ है उसके, उसकी क्या जरूरत है, उपकार स्मरण करने की क्या जरूरत है। वहाँ कहते हैं इस तरह नहीं कहना, क्योंकि ऐसा कथन है, ये क्या कथन है उसको बता रहे संसिद्धि ब्रसनात् परमेष्ठिना हुसद्गुण स्तोत्रम शास्त्रादौ मुनि पुंगवाह। श्रेयो मार्गे ने कल्याण का मार्ग, श्रेय निश्रेयस और श्रेयस ये दोनों ही शब्द आते हैं ना, कल्याण, तो कल्याण श्रेय ने कल्याण का जो मार्ग, श्रेय जो कल्याण, उसके मार्ग की संसिद्धि ने सम्यक प्रकार से सिद्धि, सिद्धि होना है ने उसको प्राप्त होना, वह परमेष्ठी के प्रसाद से होती है, प्रसादात परमेष्ठिना, परमेष्ठियों के प्रसाद से होती है। इत्याहु ऐसा बताया है। तद्गुण स्तोत्रम शास्त्रादौ, शास्त्रादौ ने शास्त्र के आदि में कौन करते हैं, मुनि पुंगवाह, मुनि पुंगव, पुंगव ने श्रेष्ठ, तो मुनियों में श्रेष्ठ है, यानी जो जैसे हम कहते जिनवर कहते हैं, जिनवर वृषभ कहते हैं, ऐसे मुनि पुंगव कहने की पद्धति,
यानी मुनियों में जो प्रधान है,
हाँ, प्रधान है, इस हेतु से मुनि प्रधान है, वे शास्त्र की आदि में यानी शुरू में स्टार्टिंग में परमेष्ठी का स्तोत्र करने को कहते हैं। पुनश्च ऐसा वचन है, अभिमत फल सिद्धे अभ्युपाय सुबोध प्रभवति सच शास्त्रात् तस्य चोत्पत्ति आप्तात् इति भवति सह पूज्य तत्प्रसादात् प्रबुद्धैर् नहि कृतम् उपकारम् पंडिता विस्मरन्ति। पंडिता के बदले साधवा विस्मरन्ति। अंतिम जो चरण है क्या कहते हैं, नहि कृतम् उपकारम्, किए हुए उपकार को साधुए ने सज्जन लोक, साधुए ने मुनि ने सज्जन लोक भूलते नहीं है। अभी ये शुरू से क्या कहा है इसका अर्थ, वो अर्थ देखते देखते हम शब्द से भी अर्थ देखेंगे। वांछित यानी अभिष्ट फल की सिद्धि होने का उपाय, अभिमत यानी वांछित, हम जो चाहते हैं वो फल की सिद्धि होने का अभ्युपाय ने उपाय क्या है, तो सुबोध सम्यक ज्ञान है। हमें कौन सी, क्या हमें अभिष्ट है, कल्याण, मोक्ष मार्ग हमें इष्ट है, तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी, सम्यक ज्ञान से होगी। तो सुबोध प्रभवति सच, और वो कैसे होता है, शास्त्रात, वह सम्यक ज्ञान शास्त्र से होता है यानी ग्रंथ से होता है। तस्य च उत्पत्ति आप्तात्, उत्पत्ति ही आप्तात्, तो राह हो गया उसका, तथा उस शास्त्र की उत्पत्ति आप्त जो सर्वज्ञ है उनसे है। सर्वज्ञ भगवान को आप्त कहते हैं, जिनकी वाणी से हमें मोक्ष मार्ग का पता चलता है, उपदेश मिलता है, उनका उनको कहते हैं आप्त। इस हेतु से आप्त सर्वज्ञ देव हैं, वे उनके प्रसाद से ज्ञानवंत हुए जो जीव, यानी उनके उपदेश के कारण जो जीव ज्ञानी हो गए, उनके द्वारा पूज्य होते हैं। तो ऐसा नेचुरल है ना, क्यों कि जिनके द्वारा हमें उपदेश की प्राप्ति हुई, सम्यक ज्ञान हुआ, तो उस जीव के प्रति, उन सर्वज्ञ के प्रति तो अहोभाव आए बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए कहते सो न्याय यही है, न्याय यही है ने, ये तो ठीक ही है, योग्य ही है, लॉजिकल है। और पंडित है, वे किए हुए उपकार को नहीं भूलते। पंडित कहो या सज्जन कहो या भले पुरुष जो है, वो किसी ने उपकार किया हुआ है तो उसको कभी भूलते नहीं। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, हमारे एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए या धंधे के लिए किसी ने हमें कोई पैसे भी दिए हैं, कोई एडवाइस दिया है, तो भी हम उस उपकार को नहीं भूलते हैं।
इसका अर्थ क्या हुआ, किए हुए उपकार को भूले वह साधु नहीं है, मैंने क्या,
साधु यानी
सज्जन नहीं है।
हम ऐसा भी देखते हैं, हम इस मार्ग के प्रति, अभी वो आगे का मोक्ष मार्ग की बात छोड़ दो, ये जो स्वाध्याय है और ये जो जिन मार्ग, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, उस सुनने का मौका हमें कैसे मिला, किसी के एडवाइस से या किसी कोई ऐसा प्रयोजन हो जाता है, इसे कोई निमित्त बन जाता है, तो उस जीव के प्रति भी हमें बहुत हमेशा ही अहोभाव होता है, उसका उपकार हम कभी नहीं भूलते।
जैसे हमें गुरुदेव के प्रति आदर है, उनके प्रति अहोभाव है, उनके निमित्त से तो ये बात हमें प्राप्त हुई है, और हम उनके सामने जाके बोलेंगे अरे तुमने क्या सिखाया, हमारे ज्ञान का उगाड़ा, हमारे ज्ञान गुण के कारण हुआ, तो उसको सज्जन कहेंगे ना हम। चलो
हाँ, देखो इसलिए शास्त्र के प्रारंभ में उपकार स्मरण किसे अर्थकारी है इस तरह नहीं कहना, ये जो शंकाकार ने पूछा था वो किसे कार्यकारी यानी किसे लाभदायक है, इस तरह चौथा प्रयोजन दृढ़ किया कि शास्त्र के आदि में ये जो उपकार का स्मरण करना है वो प्रयोजन है उसका। इसीलिए विघ्न विनाशने के लिए तथा शिष्टाचार पालने के लिए तथा नास्तिक के परिहार के लिए तथा अभ्युदय का कारण जो परम पुण्य उसे उपजाने के लिए तथा ये अभ्युदय हमने देखा ना तीर्थंकर चक्रवर्ती इंद्र आदि जो पद मिलते हैं वो पुण्य से सातिशय पुण्य से उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए तथा किए हुए उपकार को याद करने के लिए शास्त्र के प्रारंभ में जिनेन्द्रादि को नमस्कार आदि रूप जो मुख्य मंगल उसका आचरण करते हुए पुनश्च जो अर्थ कहेंगे उस अभिधेय की प्रतिज्ञा को प्रकाशित करते हुए आचार्य है सो सिद्धम इत्यादि गाथा सूत्र को कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, यानी पहले नमस्कार रूप मंगल किया, अभी प्रतिज्ञा कहेंगे। ग्रंथ के शुरू में मुनिराज प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस विषय को अभी लिखूंगा, जैसे आगे अभी जीवस्य परुवणम वोच्छम यानी जीव की प्ररूपणा मैं बताऊंगा, ऐसे यहाँ कहते हैं। अभी हम जो रोज मंगलाचरण गाते हैं ना वो ये जो इस ग्रंथ का पहला जो छंद है ये उसकी जो गाथा है उसको पढ़ेंगे। हाँ कहाँ गया, अभिधेय ने नाम जो अर्थ कहेंगे उस अभिधेय की प्रतिज्ञा को प्रकाशित करते हुए यानी उसके नाम बताकर उसकी प्रतिज्ञा कहेंगे यानी उसका विषय क्या है उसको बताएंगे, अभी किस बारे में ग्रंथ में चर्चा चलेगी उसकी बात यहाँ प्रतिज्ञा के रूप में बताएंगे। वो तो है तो सत्य महाव्रत के धारी फिर भी प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनेन्द वरणे मिचंद मकलंकम गुणरयण भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम सिद्धम शुद्धम प्रणम्य जिनेन्द्र वरणे मिचंद्र मकलंकम गुणरत्न भूषणोदयम जीवस्य परुवणम मोक्षे प्ररूपणम। ये संस्कृत है, ऊपर जो हमने पढ़ा वो प्राकृत है मूल ग्रंथ, और बाद में उसकी संस्कृत उसकी अनुवाद संस्कृत में हुआ है। अब जो टीका में जो है संस्कृत के शब्द लेकर उसका अर्थ समझाया है।
देखो यहाँ एक विशेषता ऐसी है, यहाँ एक ही गाथा के अनेक प्रकार के अर्थ भी किए जाएंगे, उससे कंटालना मत, वो अर्थ करने वाले की बुद्धि की प्रगल्भता को याद रखना कि इसके इतने अर्थ निकल सकते हैं, ऐसी भी बात आएगी देखना।
अहम वक्षामी यानी मैं कहता हूँ, ये कौन कह रहे है, ग्रंथ करता। अहम अर्थात मैं जो हूँ ग्रंथ करता, वक्षामी अर्थात करूंगा, किसे करूंगा, प्ररूपणम अर्थात व्याख्यान अथवा अर्थ को प्ररूपने वाले वा अर्थ जिसके द्वारा प्ररूपित किया जाए ऐसा जो ग्रंथ उसको करूंगा। यहाँ जो भाषा की जो वाक्य रचना है ना वो संस्कृत जैसी है, इनके द्वारा लिखा गया वगैरह वगैरह ना, इन्हें लिखा ऐसा नहीं डायरेक्ट कहते, तो जिसके द्वारा प्ररूपित किया जाए ऐसा ग्रंथ यानी मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा कि जिसमें ये प्ररूपणा होगी। ये हिंदी मराठी की वाक्य रचना और संस्कृत की थोड़ी अलग होती है। कस्य प्ररूपणम, किसका प्ररूपण कहूंगा, जीवस्य अर्थात चार प्राणों से जीता है। जीव किसको कहेंगे, जो चार चार प्राण पता है, अब बोलो। हाँ भाव प्राण की बात चल रही है। हाँ फिर भी ज्ञान दर्शन सुख और सत्ता, और द्रव्य प्राणों को लेना है तो, क्योंकि जीता रहूंगा उसमें तो सिद्ध भगवान को भी लेना पड़ेगा, ख्याल में आए ना। हाँ तो जीवस्य अर्थात चार प्राणों से जीता है, जिएगा और जिया है ऐसा जो जीव, जो आत्मा, जीव कहो या आत्मा कहो एक ही बात है, उस जीव के भेदों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र मैं कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की है। जीव के प्ररूपणा बताऊंगा ऐसा कहा ना, ये 20 प्ररूपणा हम देखेंगे। प्ररूपणा यानी भेद, जीवों के भेद, ये भी संसारी जीवों के भेदों की पहले बात करेंगे, फिर सिद्धों में उनमें से क्या लागू होता है उसको भी बताएंगे। यहां द्रव्य प्राण की बात करनी है तो कौन से करेंगे, द्रव्य प्राण कौन कौन से होते हैं, इंद्रिय प्राण, एक उसका इन्हें ग्रुप लेना, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोश्वास और आयु। इस प्रतिज्ञा द्वारा यानी पहले में पहले जीवों के भेदों का मैं प्ररूपण कथन करूंगा ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा द्वारा इस शास्त्र के संबंध, अभिधेय, शक्यानुष्ठान, इष्ट प्रयोजनपना है, इसलिए बुद्धिवंतों के द्वारा आदर करने योग्य कहा है। क्या कहते हैं, ये इस शास्त्र के संबंध अभिधेय, जीव के बारे में प्ररूपणा करूंगा, वो बताया उन्होंने, नाम भी बताया और उस किसके बारे में कथन है वो भी बता दिया। शक्यानुष्ठान, ये क्या होता है शक्यानुष्ठान और अशक्यानुष्ठान, अनुष्ठान है ना आचरण, कोई क्रियाएं जो उसके कहते हैं रिचुअल्स, उसको कहेंगे अनुष्ठान, और हमें जो शक्य है उसको शक्यानुष्ठान कहते हैं। कल बात हमने देखी थी ना, पढ़ी थी अष्टपहाड़ में, कि श्रद्धा करना, कोई बातें ऐसी है कि हम कर नहीं सकते हैं फिर भी उसकी श्रद्धा करना, तो शक्यानुष्ठान जो हम कर नहीं सकते उसकी श्रद्धा करना। करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है ये पहले डिसाइड करना, निर्णय करना, जैसे राग संपूर्ण रीति से त्यागने योग्य है, ये निर्णय पहले हो चुका, अभी राग का पूरा त्याग नहीं हो रहा है, राग की उत्पत्ति हो रही है, फिर भी श्रद्धा ऐसा है कि वो त्यागने योग्य है, तो यहाँ तो अलग बात बता रहे हैं, ये आगे लिख रहे उसके देखो संबंध क्या है, जैसा संबंध है वैसा ही जहां अर्थ हो उसे संबंध अभिधेय कहते हैं, तथा जिसके अर्थ का आचरण करने की सामर्थ्य हो उसे शक्यानुष्ठान कहते हैं। आचरण की सामर्थ्य, शक्य है ना वो करने के लिए, शक्य है, पॉसिबल है, तथा जो हितकारी प्रयोजन लिए हो उसे इष्ट प्रयोजक कहते हैं, यानी जिसका प्रयोजन, जिसका कारण इष्ट इष्ट है, हितकारी है, उसको इष्ट प्रयोजक कहते हैं। तो शास्त्र इसलिए ऐसा है, ये शास्त्र क्या है, संबंध अभिधेय है, शक्यानुष्ठान है और इष्ट प्रयोजक है, इसलिए बुद्धिवानों को इसका आदर करना चाहिए। कथम भूतम प्ररूपण प्ररूपणम, जिसको कहूंगा सो कैसा है प्ररूपण, ये प्ररूपण को मैं करूंगा, जीवों के भेदों का मैं कथन करूंगा, तो ये कैसा है प्ररूपण, प्ररूपण यानी कथन, विस्तार से कथन करना उसको कहेंगे प्ररूपण करना, और जो व्याख्यान है उसको कहेंगे प्ररूपणा। गुणरत्न भूषणोदयम, अब ये जो गुणरत्न भूषणोदयम, जिनेन्द्र वर नेमी चंद्रम, इस एक एक शब्द के अनेक अर्थ लेंगे और हर बार उसके अलग अलग अर्थ करके हमें समझाएंगे। हाँ। गुण जो सम्यक दर्शनादिक वे ही हुए रत्न, सो ही है आभूषण जिसके, आभूषण समझते है गहने, हाँ ऑर्नामेंट्स, ऐसा जो गुण रत्न भूषण चामुंडराय, चामुंडराय का ये विशेषण बनाया, गुण के गुण रूपी रत्नों का आभूषण जिनके है ऐसे चामुंडराय, उससे है उदय अर्थात उत्पत्ति जिसकी ऐसा शास्त्र है, क्योंकि चामुंडराय ने प्रश्न पूछा था और उसके निमित्त से गोमटसार ग्रंथ की रचना हुई है, क्योंकि चामुंडराय के प्रश्न के वश से इसकी उत्पत्ति प्रसिद्ध है। अथवा गुण रूप जो रत्न सो भूषयति अर्थात शोभते है जिसमें, ऐसा गुणरत्न भूषण मोक्ष उसका है उदय अर्थात उत्पत्ति जिससे, ऐसा शास्त्र है। क्या कहते हैं, इस शास्त्र से मोक्ष की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसी को गुणरत्न भूषण उदय कहा, इस शास्त्र को ही। भावार्थ, यह शास्त्र मोक्ष का कारण है तथा विकथादि रूप बंध का कारण नहीं है। ये कोई शास्त्र में विकथादि नहीं है जिसके कारण बंध हो जाए। अन्य जो हम नॉवेल्स या अन्य जो कोई पढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है, विकथाएं होती है जो बंध का कारण है, और ये शास्त्र मोक्ष का कारण है।
कौन से शास्त्र की बात चल रही है? हाँ बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ।
हाँ, आप मुझे पूछ, मुझे लगा ये लोगों को पूछ रहे हैं आप।
नहीं, नहीं,
इस शास्त्र को यानी यहाँ कर्णान योग का जो गुमटसार की बात चल रही है, जीव कांड की बात चल रही है, सभी शास्त्र वितरागता के पोषक है।
हाँ, लेकिन यहाँ हाँ, तो
यहाँ तो कर्णान योग की मुख्यता है।
अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड, वह भी क्यों मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? कर्णान योग पढ़कर भी जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है, ख्याल में है ना? यानी ये इतना गया बीता नहीं है कि जिसको हम टोटली निग्लेक्ट करें, क्यों साहब? तो यहाँ क्या कह रहे हैं, और विकथादि रूप बंध का भी कारण नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बंडलबाजी नहीं है, अनेक वीक कथाएं नहीं है, बिल्कुल जो है वह क्या कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में आई हुई बात है, उसका कथन है। चल आगे
देखो, इस विशेषण द्वारा बंधक, बंध्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु, बंध भेद, ये पांच सिद्धांत के अर्थ है। ये पांच प्रकार इसमें बताएंगे, अकेले जीव कांड की बात नहीं, आगे भी कर्म कांड को भी लेना है, तो इसलिए गोमटसार का नाम है पंच संग्रह, इन पांच की बात करेंगे।
हाँ, ये किसी ने पूछा था ना, पंच संग्रह,
पंच संग्रह आपने पूछा था ना। हाँ, देखो आगे लिखा है, हम आगे के पैराग्राफ में उसको पढ़ेंगे। वहाँ कर्म बंध का कर्ता संसारी जीव सो बंधक, बंधक करने वाला वो बंधक, यानी जीव को बंधक कहा, तथा मूल उत्तर प्रकृति बंध के सहित सो बंध्यमान, यानी जो प्रकृति बंध से, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति, मूल प्रकृति यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये जो आठ है उसको मूल प्रकृति कहते हैं, उसके जो सब डिविजन से ज्ञानावरण के पांच, दर्शनावरण के नौ वगैरह वगैरह, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। उस सहित जो बंध्यमान, यानी उससे बंध्यमान है बंधने में वाला, यानी बंध रहा है जैसा, बंध्यमान, बंध्यमान
जैसा श्रीमान होता है पैसे वाला, वैसे बंधने,
बंध्यमान उसके सहित, प्रकृति बंध से सहित उसको कहेंगे बंध्यमान, तथा यथा संभव बंध के सद्भाव सहित गुणस्थानादिक सो बंध स्वामी,
यानी बंध का मालिक।
हाँ, क्योंकि गुणस्थानादि कब तक है, जब तक कर्म की सत्ता है ना, सिद्धों के कोई गुणस्थान नहीं है, ये बंध स्वामी हुए। तथा मिथ्यात्वादी आश्रव सो बंध हेतु, बंध हेतु यानी बंध का कारण, ये मिथ्यात्वादी आश्रव में किसको किसको लेना याद है? हाँ, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इसको यहाँ बंध के हेतु कहा। तथा प्रकृति स्थिति आदि बंध भेद, जैसे प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये जो भेद है इनका निरूपण है, बंध भेद हुए नहीं है, कौन कौन से हुए, बंधक, बंध्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद, इनका निरूपण है, इसलिए गोमठ सार का दूसरा नाम पंच संग्रह है। उनमें बंधक जो जीव, उसका प्रतिपादन करने वाला यह शास्त्र जीव स्थान व जीव कांड इन दो नामों से विख्यात है, उसे मैं कहूंगा। यहाँ पर ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड है, जो प्रया कर्म कांड वो आगे वाला है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। तो यहाँ बंधक में जीव कांड शास्त्र की रचना हुई है उसको बताने के लिए। इस तरह यह विशेषण शास्त्र के कर्ता का अभिप्राय दिखाता है। पुनश्च कथम भूतम प्ररूपणम, ये कथम भूतम प्ररूपणम तो एक अर्थ बता दिया उन्होंने, दोबारा फिर पूछ रहे कैसा है, तो गुणरत्न भूषणोदय इतना कहा, तो उसका एक अर्थ बता दिया कि चामुंडरा है, दूसरा अर्थ बताया गुणरत्न भूषणोदय का मोक्ष, और उसका प्रयोजन कैसा है वो बात बता दी। फिर अभी अलग पद्धति से बताते हैं कैसा है प्ररूपण। सिद्धम अर्थात पूर्वाचार्यों की परंपरा से प्रसिद्ध है, सिद्ध मैंने प्रूव है, प्रूढ़ सिद्ध है, प्रसिद्ध है, अपनी रुचि से रचना रूप नहीं किया है, ये मुख्य बात है। ये प्ररूपण कैसा है, तो पूर्वाचार्यों की परंपरा से जो प्रसिद्ध है, जो चला आ रहा है, किसी ने अपनी रुचि के अनुसार उसमें कोई हेरा फेरी नहीं की है, ऐसा है। इस विशेषण द्वारा आचार्य अपने कर्तापना को छोड़कर पूर्व आचार्य आदिकों के अनुसार कहते हैं, यानी स्वयं कभी भी देखेंगे वहां लिखेंगे ऐसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है, बार बार आएगी ऐसी बात। अभी
ये बात तो हम जब कुंदकुंदा आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हर दो चार गाथा के बाद ऐसा आता है, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा बताया, ऐसा कोई ये नहीं कहते कि मैं कहता हूँ। आगे
पुनः किम विशिष्ट प्ररूपणम तथा कैसा है प्ररूपण। शुद्धम, पहले कहा सिद्धम फिर कहा शुद्धम, है ना, सिद्धम शुद्धम कहते ना, तो शुद्धम यानी पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित है, इसलिए निर्मल है। शुद्ध यानी दोष से रहित है, कौन से दोष हो सकते हैं, पूर्वापर विरोध, जैसे हमने कल देखा था अन्य मति में कहीं तो हिंसा का पोषण होता है, कहीं हिंसा का निषेध करते हैं, कहीं ब्रह्मचर्य धारण करो कहेंगे, तो कहीं तो कहेंगे जिसके पुत्र ने उसको स्वर्ग में एंट्री नहीं, ये पूर्वापर विरोध हुआ। तो यहाँ ऐसा विरोध नहीं है, जिन मत में ऐसा कहीं विरोध नहीं है, इसलिए निर्मल है। इस विशेषण से इस शास्त्र का सम्यक ज्ञानी जीवों के उपादेयपना प्रकाशित किया है। उपादेय ने वो तो ग्रहण करने लायक, पढ़ने लायक, जानने लायक है, उसका अभ्यास करने लायक है।
कौन से जीवों के लिए? सम्यक ज्ञानी जीवों के लिए भी है ऐसा कहते हैं।
हाँ, यानी जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है वो सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने के लिए इसको अभ्यास करो, और जो ऑलरेडी सम्यक ज्ञानी है वो, और उसमें उनके तो असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण बताया है। हाँ, किम कृत्य, क्या करके, हमने देखा सिद्धम शुद्धम प्रणम्य, प्रणम्य ने प्रणम्य संस्कृत में प्रणाम करके, तो प्रणम्य अर्थात प्रकर्षपने नमस्कार करके, नमना ने नमस्कार करना, प्रणम्य ने विशेष रूप से प्ररूपण करता हूँ। कम
प्रकर्षपने याने विशेष, मतलब विनय पूर्वक कहो या जोर से, विथ मोर एटमोस्ट इंटेंसिवली प्रकर्ष।
हाँ, तो प्रणम्य यानी नमस्कार करके, किसे नमस्कार करके वो अभी पूछ रहे। कम यानी किसे, जिनेन्द्र वरन एमी चंद्रम, कर्म रूपी वैरियों को जीते वह जिन, जिनेन्द्र कहा ना, तो जिन का अर्थ क्या है, जो जीता वो जिन, किसको जीता है, कर्म रूपी वैरियों को। अपूर्वकरण परिणाम को प्राप्त प्रथमोपशम सम्यक्तों के सन्मुख सातिशय मिथ्या दृष्टि वे जिन कहलाए, क्या कहते हैं? ये जिन कहां से कहना शुरू किया? ये क्या लिख रहे यहाँ पर? देखो देखो, प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करना जिसने अभी शुरू किया है, करण लब्धि में आ गया है,
सेकंड करण,
तो अपूर्व करण में आया है, अध प्रवृत्त करण के बाद अपूर्व करण में आया है, तो उस प्राप्त ऐसे अपूर्व है ना, ये परिणाम कैसे अपूर्व हुए अभी, हाँ पहले ऐसे नहीं हुए थे, ऐसे अपूर्व परिणाम हुए हैं, ऐसे जो सातिशय मिथ्या दृष्टि का उसको वे जिन कहलाए, वे ही हुए इंद्र।
देखो यहाँ एक विशेष बात आपने नोट की होगी, सातवें गुण स्थान के दो वेद हमने सीखे थे, कौन से? हाँ बोलो, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त, यहाँ मिथ्या दृष्टि के भी दो वेद हो गए, यहाँ तो एक सातिशय मिथ्या दृष्टि यानी कैसा कि अभी जो आगे चलकर सम्यक्त की प्राप्ति करने वाला है,
अब नियम से करेगा अंतर्मूर्त में,
अपूर्व करण में पहुंच गए ना, उसको भी यहाँ जिन कहा है, देखो भाई कैसी मजा है,
उसने भी जीत लिया ना अभी मिथ्यात्व का, तो अभी वहाँ तो अनुदय ही होने वाला है, औक्षमिक प्राप्त करना ही वाला है, अभी प्रथमोपशम के सन्मुख है, वे ही हुए इंद्र। इंद्र क्यों कहते, किसी को ऐश्वर्य को भोगता है इसलिए उसको इंद्र कहते हैं, तो कौन सा ऐश्वर्य को भोगता है? कर्म निर्जरा रूप ऐश्वर्य उसका भोगता, उसको आदि देकर सर्व जिनेन्द्रों में वर अर्थात श्रेष्ठ, क्या कहते हैं? ये अपूर्व करण से ही ये तो गुणश्रेणी शुरू हो गई वहां पर, इसलिए वहां लिया, अध प्रवृत्त को नहीं लिया, तो क्या कहते वो निर्जरा शुरू हुई मिथ्या, तो अभी मिथ्या दृष्टि है फिर भी निर्जरा, हाँ वहां तो निर्जरा चालू हो गई उसके, क्योंकि अभी वो नियम से सम्यक तो प्राप्त करने वाला है, वो कैसे होती है क्या होते है, वो विषय कर्म कांड का है, होती है इतना अभी हम देखते हैं, तो कहते उसका भोक्ता को आदि देकर सर्व जिनेन्द्रों में वर, इंद्र बताए ना, इंद्र क्यों? कर्म निर्जरा रूपी ऐश्वर्य को भोगता है, यानी जिनके जिनके कर्म निर्जरा होती है, किस कहां से शुरू हुई? सातिशय मिथ्या दृष्टि अपूर्व करण से, जो प्रथम उपशम सम्यक के सन्मुख है, यानी सभी सम्यक दृष्टियों को लिया इसमें और सभी को जिनेन्द्र कहा, जिन कहा, इंद्र कहा, क्योंकि कर्म निर्जरा कर रहे हैं, अब उसमें वर यानी श्रेष्ठ ऐसे कौन है? असंख्यात गुणी महानिर्जरा के स्वामी ऐसे चामुंडराय द्वारा निर्मापित महापूत चैत्यालय में विराजमान नेमी नामक तीर्थंकर देव, यहाँ जो अभी हम श्रवण बेलगोला में जाते हैं वहां तो नेमीनाथ भगवान का भी मंदिर था, चैत्यालय, महापूत चैत्यालय में विराजमान नेमी नामक तीर्थंकर देव, वे ही भव्य जीवों को चंद्र इति अर्थात आह्लाद करे, वह समस्त वस्तुओं को प्रकाशे, प्रकाशे ने समस्त वस्तुओं को जाने, केवल ज्ञान है ना उनके, अथवा संसार आताप और अज्ञान अंधकार के नाशक, आताप ने संसार रूपी ताप जो है, जिसे सूरज का आताप होता है ना, सहन नहीं होता है, ऐसे संसार रूपी आताप और अज्ञान रूपी अंधकार इनका नाशक ऐसे जिनेन्द्र वर नेमी चंद्र, कहां से कहां अर्थ निकाला? जिनेन्द्र वर चामुंडराय को कहा था, और उनके द्वारा निर्मापित ऐसे जो नेमिनाथ तीर्थंकर देव, उनकी वहां मूर्ति विराजमान थे।
यहाँ ये जो शब्द है जिनेन्द्र वर नेमी चंद्र, इसके अलग अलग,
अभी बहुत अलग अलग अर्थ,
देखो जिन, फिर इंद्र, फिर वर, फिर नेमी, और फिर चंद्र यति यानी जो सबको जाने वगैरह वगैरह,
आह्लाद यानी प्रसन्न, जैसे चंद्रमा उगता है तो कैसे शीतलता होती है और लोगों को प्रमोद होता है, आनंद होता है, आह्लादित होते
हैं। नहीं, अपने घर का छोटा बालक जब बोलना शुरू करता है तो हमको कितना, मम्मी बोले तो मम्मी को तो स्वर्ग दो उंगली रह जाता है, वो आह्लाद है,
आह्लाद यानी आनंद,
आनंद।
पुनश्च कैसा है अकलंकम अर्थात कलंक रहित, उनको नमस्कार करके मैं जीव का प्ररूपण कहूंगा। अथवा अन्य अर्थ कहते हैं, अभी इसी श्लोक के अन्य अन्य अर्थ कहेंगे। प्रणम्य कम प्रणम्य किसे नमस्कार करके जीव का प्ररूपण करता हूँ, जिनेन्द्र वर नेमी चंद्रम, इसी शब्द का दूसरा अर्थ बता रहे हैं। नेमी चंद्र नामक 22वें जिनेन्द्र तीर्थंकर देव, उन्हें नमस्कार करके जीव की प्ररूपणा करता हूँ। कैसे है वे, सिद्धम अर्थात समस्त लोक में विख्यात है। पुनश्च कैसे है, शुद्धम अर्थात द्रव्य भाव स्वरूप घातिया कर्मों से रहित है। तथापि कोई संशयी उन्हें क्षुधादि दोषों का संभव कहते हैं, उनके प्रति कहते हैं कैसे है वे, यानी कोई कहेंगे वो तीर्थंकर हुए तो क्या उनके क्षुधा तृषा आदि होती है, तो उनका निराकरण करने के लिए कहते हैं अकलंकम यानी कलंक रहित है,
दोष
रहित है।
कलंक यानी दोष, 18 दोष है ना, किसके, अरिहंतों को 18 दोष होते हैं ना, दोष रहित होते हैं, इतना तो समझ में आया।
तो इसलिए उन्हीं को अकलंक कहा। नहीं विद्यमान है कलंक अर्थात क्षुधादिक 18 दोष जिनके ऐसे हैं। पुनश्च कैसे हैं, गुणरत्न भूषणोदयम, ये तीर्थंकरों के ये सारे उपमाएं विशेषण बताएं। गुण जो अनंत ज्ञानादिक, वे ही हुए रत्न के आभूषण, उनका है उदय अर्थात उत्कृष्टपना जिनमें ऐसे हैं। इस प्रकार अन्य में नहीं पाए जाए ऐसे असाधारण विशेषण समस्त अतिशयों के प्रकाशक, अन्य के आप्तपने की वार्ता को भी जो भी जे सहे नहीं, ऐसे इन विशेषणों द्वारा इसी भगवान के परम आप्तपना, अन्य मतियों के जो भगवान सो कॉल्ड है उनमें तो ये आप्तपना संभवित ही नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान तो कल्पना से रचित है ना, ऐसे कोई है ही नहीं है। ऐसे नहीं कि ये हमारे भगवान है ये तुम्हारे भगवान है, भगवान तो भगवान होते, उनका तो वितराग सर्वज्ञ जो स्वरूप होता है। तो ये कैसे परम आप्तपना है इनके, परम कृतकृत्यपना है, कृतकृत्य ने करने जैसा सब कर लिया उन्होंने, हमसे आदि देकर जे अकृतकृत्य है, ये कौन कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं। हम कैसे हैं तो अकृतकृत्य है, और भगवान कैसे है, कृतकृत्य है। तो हमसे आदि देकर ने हम सहित अन्य जो कोई है अकृतकृत्य, उनके शरणपना प्रतिपादन किया है ऐसा जानना, तो जो अभी परमात्मा पना को नहीं प्राप्त हुए है वे सभी परमात्मा को शरण जाएं, उनको प्रणाम करें, ये बात बता रहे हैं।
देखो यहाँ स्वयं आचार्य अपने को पहला नंबर देते हैं, हमसे आदि देकर, यानी हम अभी कृतकृत्य नहीं है वैसे अन्य अनेक है, तो उसमें अपना नंबर पहला लगाया, यानी कितनी विनम्रता है।
अभी अथवा अन्य अर्थ कहते और अन्य अर्थ कहेंगे। हाँ, कम प्रणम्य किसे नमस्कार करके जीव का प्रतिपादन कर रहे हो, जिनेन्द्र वर नेमी चंद्रम, संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में सघन बंधे हुए, सघन यानी बिल्कुल सॉलिड, सॉलिड यानी ठसोठस भरे हुए, क्या भरे है, कर्म, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में सघन बंधे हुए जो घाती कर्म रूप मेघपटल, उसको मेघपटल मेघों की उपमा दी, उनके विघटन से प्रकटीभूत हुए अनंत ज्ञानादि नव केवल लब्धिपना, कल हमने देखा था नव केवल लब्धि, याद है कि नहीं,
मिली भाई को याद है,
नव क्षायिक लब्धि जिसको कहते केवल लब्धि, बोलो नहीं मालूम, क्षायिक क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और पांच दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये नौ क्षायिक लब्धि कहो या उसको केवल लब्धि कहो, इसलिए जिन कहते इन्हें चार घाती कर्मों के नाश के कारण ये नवक्षायिक भाव प्रकट होते हैं, इसलिए उसको जिन कहा, उनको जिन कहा। पुनश्च अनुपम, अनुपम यानी जिसको किसी की उपमा नहीं दे सकते, ऐसे परम ईश्वरता द्वारा संपूर्णपना होने से इंद्र कहते हैं। जिन सो ही इंद्र, सो जिनेन्द्र, अपने ज्ञान के प्रभाव से व्याप्त हुआ है तीन काल संबंधी, तीन लोक का विस्तार जिसके, ऐसा जिनेन्द्र वर अर्थात अक्षर संज्ञा से 24 क्या कहते हैं, समझ में? ये जो हम फिगर्स लिखते हैं ना 24, तो वो क्या है, अंक है, उसको अंक कहते हैं। और अभी वर के द्वारा उसका अर्थ वर लिखा और उसका अर्थ उन्होंने 24 किया, वो कैसे किया वो बताएंगे, वो आगे भी बात आने वाली है, फिर भी यहां कुछ समझाते हैं कैसे, यानी जो 24 जिनेन्द्र है ना उनकी बात बता रहे अभी। तो वर शब्द से 24 अर्थ कैसे निकाला, तो कटपय पुरस्थ वर्ण ही इत्यादि सूत्र की अपेक्षा, आगे चलकर ये बातें आने वाली है, कख आगे जो है ना एक एक अक्षर लेटर उसको उसका वैल्यू दी जाती है,
नंबरिंग
के लिए नंबरिंग, न्यूमरोलॉजी मालूम है आपको, ABCD को भी देते मालूम है, सुना है कि नहीं? हाँ, अपना नाम क्या लिखना वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, वो बराबर है कि नहीं, लकी नंबर है कि नहीं, देख देख के, उसकी बात नहीं। यहाँ तो कोड लैंग्वेज कहो या उसकी जो वैल्यू है, एक एक अक्षर की वैल्यू, क के लिए एक, ख के लिए दो, ग के लिए तीन, इस तरह से आगे भी जो जैसे नंबरिंग है, तो ये आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं। तो उस सूत्र की अपेक्षा य र ल व में से वकार चौथा अक्षर, य को एक वैल्यू है, र की दो वैल्यू, दो है, ल की वैल्यू तीन है और व की वैल्यू चार है, तो व की वैल्यू कितनी हुई, चार, उसका चार का अंक। और रकार दूसरा अक्षर, य और र, र की वैल्यू है दो, अंकों की बाएं तरफ गति है, इसका अर्थ क्या है, अंक हमेशा पहले राइट साइड का पढ़ते फिर लेफ्ट साइड का, अक्षर अक्षर हम कैसे पढ़ते हैं, आपका नाम क्या, अ मो ल, पहले अ लिखेंगे फिर मो फिर ल, और हमें 24 पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, 24, वो तो अंग्रेजी को भूल जाओ, हिंदी मराठी गुजराती, हाँ 24, जैसे 24 चो, पहले चार का नाम लिया फिर 20 का नाम लिया, यानी 24, 18 कोई भी ले लो, 36, 45, जो राइट साइड का है अंक उसको पहले हम कहते हैं फिर लेफ्ट को कहते हैं। तो व र, तो अक्षर तो यहाँ लिखा, व की वैल्यू है चार और र की है दो, तो चार को लिखना पहले राइट साइड में और फिर यहाँ लिखना दो, तो कितने हुए, 24, हाँ
24। देखो यहाँ क्या लिखा है,
अंकों की बाई
तरफ गति है, बाई तरफ गति यानी राइट से लेफ्ट तक हम पढ़ते
जाते, जैसे उर्दू कैसे पढ़ी जाती है राइट से लेफ्ट तक,
वैसे अंक भी ऐसे
हम पढ़ते नहीं, मगर सुना है ना ये ऐसा पढ़ते ऐसा लिखते हैं, जो जापानीज वगैरह चाइनीज वो ऊपर से नीचे ऐसा लिखते हैं पढ़ते हैं, हम अंक राइट से लेफ्ट को पढ़ते हैं। इस तरह वर शब्द से 24 का अर्थ हुआ। पुनश्च अपने अद्भुत पुण्य के महात्म्य से नागेंद्र, ये नागेंद्र ने भवनवासी आदि में वो तो नाग कुमार वगैरह होते उनके इंद्र, उसको नागेंद्र कहा, नरेंद्र ने राजा, देवेंद्र ने देवों के इंद्र, उनके समूह को अपने चरण कमल में नमावे, उन्हें नेमी कहते हैं, यह नेमी का अर्थ निकाला उसमें से, अथवा धर्म तीर्थ रूपी रथ के चलावने में सावधान है, इसलिए जैसे रथ के पहिया समझते हैं, व्हील, हाँ रथ के पहिए के नेमी यानी धुरी है, धुरी यानी वो बीच वाला जो एक्सेल होता है ना, धुरा उसकी होती, वैसे वह तीर्थंकरों का समुदाय धर्म रथ में नेमी कहते हैं, यानी 24 तीर्थंकरों का समुदाय को यहाँ जिनेन्द्र वर्ण ने ही कहा। पुनश्च चंद्र इति अर्थात तीन लोक के नेत्र रूप चंद्रवंशी कमल वनों को आह्लादित करें उसे चंद्र कहते हैं। ये कमल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सूरज उगने पर उगने वाले और दूसरे जो होते हैं वो शाम को चंद्र उगने पर उगते हैं, उसको कहा यहाँ चंद्रवंशी कमल और उसके वन। तो जब चंद्र उगता है तो वो सारे कमलों को आह्लादित करता है, आनंदित करता है। अथवा जिसके वैसे रूप की संपदा का संपूर्ण उदय होता है, जिस रूप संपदा की तुलना में इंद्रादिकों की सुंदरता का समीचीन सर्वस्व भी परमाणु के समान हल्का होता है, यानी भगवान के रूप के सामने इंद्रों का जो कोई रूप है जैसे परमाणु जैसा तुच्छ है ना अन्य चीजों के सामने, वैसे उनका रूप तीर्थंकरों के रूप के सामने कुछ नहीं है। सो नेमी वही चंद्र, सो नेमी चंद्र वर अर्थात 24 संख्या युक्त जो नेमी चंद्र वह वर नेमी चंद्र, सो जिनेन्द्र वही वर नेमी चंद्र, सो जिनवर नेमी चंद्र अर्थात इसका अर्थ अभी लास्ट में क्या बताया, वृषभादि यानी आदिनाथ भगवान से लेकर वृषभनाथ भगवान से वृषभदेव से लेकर वर्धमान पर्यंत यानी महावीर पर्यंत तीर्थंकरों का समुदाय उन्हें नमस्कार करके ये सारी बातों का अर्थ क्या निकला, 24 तीर्थंकर हाँ उन्हें नमस्कार करके जीव का प्ररूपण कहता हूँ ऐसा अभिप्राय है। अवशेष सिद्ध आदि विशेषणों का पूर्वोक्त प्रकार संबंध जानना अथवा अन्य अर्थ कहते हैं। कंटल आया कि नहीं आया, उनको लिखते समय नहीं आया था। प्रणम्य अर्थात नमस्कार करके, देखो ये तो बुद्धि की चमक दिखती है कि एक ही शब्द में से कितने अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं।
और केवल अर्थ नहीं सभी शब्दों के अलग अलग अर्थ करके वो मीनिंगफुल है।
मेरे ख्याल से कुछ 10-15 अर्थ निकाले उन्होंने।
चलो चलो वो कल ढूंढ के रखेंगे।
अथवा अन्य अर्थ कहते हैं प्रणम्य अर्थात नमस्कार करके कम किसे जिनेन्द्र वर नेमी चंद्रम जयति अर्थात जीते भेदे विदारे कर्म पर्वत समूह को उन्हें जिन कहते हैं। जिन किसको कहते हैं, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेदा है। कभी सुना है ऐसा? हाँ, भेदतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदतारम यानी भेदने वाले उसको यहाँ जिन कहा। पुनश्च नाम का एक देश संपूर्ण नाम में प्रवर्तता है, ये क्या कहते हैं नाम का एक देश संपूर्ण नाम में प्रवर्तता है। हम कहते सुमेरु पर्वत, उसका अर्थ क्या है, सुदर्शन मेरु, तो हमने खाली सूल कह दिया ना तो सुमेरु। आजकल तो ऐसा है ना शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमारा इनके भाई का लड़का है ना उनको बुलाते हैं उसके सारे फ्रेंड कजिन्स क्या कहे विश, तो उसका नाम क्या है विशाल। तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बताते हैं
हिंदी में और मराठी में क्या अर्थ होता है समझते ना
विष है ना, वो जहर वाला विष नहीं लेना तो नाम का एक देश संपूर्ण नाम में प्रवर्तता है। इस न्याय से इंद्र अर्थात इंद्रभूति ब्राह्मण, ये शॉर्ट फॉर्म कर दिया इंद्र, कौन था वो गणधर, हाँ बाद में हुए ना उसका, वह इंद्र अर्थात देवेंद्र यानी इंद्र जो है देवों के इंद्र उनको भी इंद्र कहते हैं, उसका वर अर्थात गुरु ऐसा इंद्र वर श्री वर्धमान स्वामी, वो इंद्र के गुरु कहो या जो गौतम गणधर के गुरु कहो, कौन से महावीर भगवान। पुनश्च नयति अर्थात अविनश्वर पद को प्राप्त करे शिष्य समूह को उन्हें नेमी कहते हैं, यानी अपने शिष्यों को भी मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं इसलिए उनको नेमी कहा। पुनश्च समस्त तत्वों को प्रकाशते हैं चंद्रवत, जैसे चंद्रमा सबको प्रकाशित करते हैं वैसे ये भी समस्त पदार्थों को प्रकाशित करते हैं इसलिए चंद्र कहते हैं। जिन वे ही इंद्रवर वे ही नेमी वे ही चंद्र ऐसे जिनेन्द्र वरण नेमीचंद्र वर्धमान स्वामी, पहले तो नेमिनाथ तीर्थंकर अर्थ निकाला था, फिर अर्थ निकाला तो 24 तीर्थंकर, अभी महावीर भगवान, उन्हें नमस्कार करके जीव का प्ररूपण कर रहा हूं। अन्य संबंध पूर्वोक्त प्रकार जानना अथवा अन्य अर्थ कहते हैं। प्रणाम मैंने नमस्कार करके कम किसे सिद्धम अर्थात सिद्ध हुआ वा निश्चित यानी संपूर्ण हुआ वा निष्पन्न जो होना था वह हुआ वा कृतकृत्य जो करना था वह जिसने किया वा सिद्ध साध्य सिद्ध हुआ है साध्य जिसके साध्य सिद्ध हुआ। हम भूमिते में लिखते थे राइडर्स जब ही सॉल्व करते थे, क्यों प्रतिभा आई आजकल भी लिखते क्या? नहीं लिखते हम बचपन में जब हाँ इति सिद्धम हाँ यानी ये सॉल्व हुआ इस तरह से वो ठीक तरह से सॉल्व हुआ ये लिखते है सिद्ध हुआ है साध्य जिसके साध्य ने जो सिद्ध करना है वो हो गया। क्या सिद्ध करना है? मोक्ष प्राप्त हो गया या केवल ज्ञान हो गया। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी बहुत है। बहुत यानी कितने है? अनंत है। तथापि जाति एक है इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन का सिद्धम कहा ना, सिद्ध को नमस्कार करता हूँ। तो क्या एक ही सिद्ध है? नहीं, अनेक है उनकी जाति। जैसे हम सभी जीवों के मिलकर जीव कह देते हैं, ऐसे सभी सिद्धों को मिलकर सिद्ध बता दिया इसलिए एक वचन कहा। उसके द्वारा सर्व क्षेत्र में सर्व काल में सर्व प्रकार से सिद्धों का सामान्यपने से ग्रहण करना यानी सभी क्षेत्रों के सिद्ध भगवान सभी कालों के सभी ऐसा ग्रहण करना। सो सर्व सिद्ध समूह को नमस्कार करके जीव का प्ररूपण करता हूँ ऐसा अर्थ जानना। सो कैसा है? शुद्धम अर्थात ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के द्रव्य और भाव स्वरूप कर्म से रहित है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित है, सिद्ध भगवान की बात चल रही है। पुनश्च कैसा है? जिनेन्द्र वरण एमी चंद्रम अनेक संसार वन संबंधी विषम कष्ट देने को कारण कर्म वैरी उसे जीते वह जिन कर्मों को जीतने वाले वे जिन। पुनश्च इंदन अर्थात परम ईश्वर उसका योग उससे राजते अर्थात शोभता है वह इंद्र। पुनश्च यथार्थ पदार्थों को नयति अर्थात जानता है वह नेमी अर्थात ज्ञान। वर अर्थात उत्कृष्ट अनंत रूप जिसके पाया जाता है वह वर नेमी यानी अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान जिसके पाया जाता है। पुनश्च चंद्रेति अर्थात आह्लाद रूप होकर परम सुख को अनुभवे वह चंद्र। यहाँ सर्वत्र जाति अपेक्षा एक वचन जानना। सो जो जिन वही इंद्र वही वर नेमी वही चंद्र ऐसा जिनेन्द्र वर नेमी चंद्र सिद्ध है। पुनश्च कैसा है? अकलंकम अर्थात नहीं विद्यमान है कलंक अर्थात अन्य मतियों द्वारा कल्पना किया हुआ दोष जिसके ऐसा है। पुनश्च कैसा है? गुणरत्न भूषणोदयम गुण अर्थात परम अवगाढ़ सम्यक्त्वादि 8 गुण वे ही हुए रत्न आभूषण उनका है उदय अर्थात अनुभवन व उत्कृष्ट प्राप्ति जिसके ऐसा है। सिद्धों के जो 8 गुण हैं उसकी यहाँ बात की है, बाकी बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकण सदा देत हो। दोषी सर।